खुदावंद का कलाम फरमाता है, क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है, तो आए हम सब खुदावंद अपने खुदा के हजूर झुकें और उसके पाक रूह को, जो तमाम कुदरत का, जो रूह का फल यानी कि मोहब्बत और हमारी तरबियत और नसीहत का वाह जरिया है, खुदावंद खुदा से कहेंगे कि अपने पाक रूह की रहनुमाई में हम सबको अपने कलाम की सच्चाइयों को समझने और उन पर अमल करने की कुव्वत और ताकत बख्श। खुदा बाप, जैसे हिरनी पानी के नालों के लिए तरसती है, वैसे ही हमारी रूह तेरे कलाम की प्यासी है। लश्करों के रब यीशु मसीह के नाम में हम सब की रूहों को सेर कर, तेरा कलाम जो बेतासीर नहीं लौटता, हम सब की रहनुमाई करे। यीशु मसीह नासरी के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदावन के जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अबलीस और अबलीस की उन बहकावा देने वाली, फरेब देने वाली तरकीबों, उसकी हिकमत अमली के बारे में सीख रहे हैं, क्योंकि इस दुनिया में रहते हुए हमारे तीन बड़े दुश्मन हैं, अबलीस, पुरानी इंसानियत और दुनिया का वो हर निज़ाम जो हमें बहकाता है ताकि मसीह और उसके कलाम से हटकर दुनिया के हो जाएं। और आप सबको याद है कि हम पिछले दिनों से सीख रहे हैं उन नौ कामों के बारे में जो अबलीस नकल करता है, खुदा के कामों की बनावटी जाली काम बनाकर इस्तेमाल करता है ताकि ईमानदारों को गुमराह करे। इससे पहले कि हम आज हम सीखें कि अबलीस ना कि सिर्फ उसके खादम हैं, जो उसके पैरोकार हैं, जो मसीह के पैगाम को बदलते हैं, ना कि सिर्फ उसके पास ये पैगाम है कि वो मसीह की खुशखबरी को बदलता है, बल्कि वो अपनी ज़ात में मसीह का हम शक्ल बनता है, खुदा के तख्त पर बैठना चाहता है और उसके दिल की जो लत लत जिसे यानी कि ख्वाहिश कहते हैं, यही है कि वो बनी इंसान को गुमराह करे। इसलिए आज के दौर में कुछ लोगों का ख्याल है कि शैतान कोई मखलूक नहीं है बल्कि बदी की तासीर है। आपको बताना चाहता हूं कि अबलीस शख्सियत रखता है, और उसकी शख्सियत क्या है, उसका शख्सियत का जो जुज है वो क्या है, फरेब देना, जिसके बारे में हमने दूसरा करंथियों 11 बाप उसकी 3 आयत में सीखा। फिर अबलीस शख्सियत के साथ साथ वो जज्बात रखता है, वो गुस्से में आता है, वो नाराज होता है। बामुताबक मकाश बाप 12 बाप उसकी 17 आयत के और फिर लूका 22 बाप उसकी 31 आयत के मुताबिक। और साथ ही साथ अबलीस ना कि सिर्फ एक तासीर है या एक एहसास या एक हवा है, बल्कि जब वो फरिश्ता था उसे इंतखाब करने की सलाहियत हासिल थी, जैसे आपको और मुझको चुनाव करने की कुव्वत हासिल है। जैसे हम आजाद पैदा हुए थे, खुदा ने आजाद मर्जी दी, वैसे ही उसे भी आजाद मर्जी दी कि इंतखाब करे कि वो सच्चाई का या झूठ का चुनाव करेगा, बदी का या अच्छाई का, फरमाबरदारी का या खुदा की नाफरमानी का। बामुताबक यशाया 14 बाप उसकी 12 आयत से 14 आयत तक। फिर दूसरा तिमोथियस 2 बाप उसकी 26 आयत के मुताबिक। सो अबलीस शख्सियत रखता है, वो जज्बात रखता है, वो चुनाव कर सकता है और वो एक तासीर नहीं बल्कि वो मखलूक है जिसका काम क्या है, खुदा के लोगों को गुमराह करना। और शैतान का यही मकसद बागे अदन से लेकर अब तक यही है कि बनी नू इंसान को खुदा के कलाम पर शक के लिए अभारे। यही उसका मकसद है कि वो ईमानदारों को दिलों में शक पैदा करे और गैर ईमानदारों को ये सबक दे या ये सोच दे, जबूर 14 के मुताबिक, कि कोई खुदा नहीं। कोई खुदा नहीं, कोई जिंदगी नहीं, और जिंदगी में और कोई मकसद नहीं है। इसलिए अपने मुखालफ के बारे में हमें इलम होना चाहिए कि हम किसके साथ लड़ रहे हैं, हमारा किसके साथ दंगल या रूहानी जंग है। इसलिए आज मैं चाहता हूं कि इबलीस के इस कारनामे को देखे जो उसने क्रंथस की कलीसिया में किया। इबलीस ना के यसु मसीह की खुशखबरी की नकल करता है, ना कि सिर्फ यसु मसीह की नकल करता है, ना कि सिर्फ उसके जो पैरोकार हैं वो नूर के खादम या क्या कहते हैं कि मसीह के खादमों के हम शक्ल बन जाते हैं। बामुताबक दूसरा करंथियों 11 बाप उसकी 13 और 15 आयत के मुताबिक हमने देखा था। आज मैं चाहता हूं कि हम देखें पहला करंथियों 10 बाप के अबलीस किस तरह ईमानदारों को गुमराह करता है, किस तरह वो उनके दिलों को, उनकी दिलों की मोहब्बत को ठंडा करने की कोशिश करता है। तो आज हम देखेंगे यसु मसीह की शराकत की मेज, यानी कि यसु मसीह के हुक्म को जो यसु मसीह ने दिया था कि मेरी यादगारी में यही किया करो, उसकी वो नकल किस तरह करता है। तो खुदा यसु मसीह की शराकत और रफाकत की मेज है, वैसे ही अबलीस ने अपनी एक शराकत और रफाकत की मेज बनाई हुई है। तो पहला करंथियों उसका 10 बाप, यहां पर कलीसिया को पालूस रसूल जताता है, याद दिलाता है और कहता है। जब हम 10वें बाप की पहली 12-13 आयात को पढ़ते हैं तो पालूस रसूल करंथस की कलीसिया को इंतबाह करते हुए, यानी कि आगाह करते हुए, खबरदारी देते हुए उनको कहता है कि बुत परस्ती से बाज रहो, बुत परस्ती से बाज रहो। करंथस की कलीसिया में ये आदत पाई जाती थी क्योंकि बहुत से लोग वहां पर यहूदी थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो तादाद थी वो क्या थी, यूनान का ये शहर करंथस, जो हमें तारीख के मुताबिक पता चलता है क्या था, बुत परस्ती में शामिल था, जो रोम का एक शहर था, मशहूर था, और इसकी आबादी कम से कम 7 लाख थी। और इन 7 लाख लोगों में 2% लोग गुलाम थे। और इस कलीसिया में जो सबसे बड़ा मसला वो क्या था, कलीसिया में था पालूस रसूल की रसालत पर शक, अशायरबानी की बेहरुमती, बुतों के आगे चढ़ावे चढ़ाना, उस देवी का नाम क्या था, अल्फा डेफी, ये वो औरत थी जिसका मंदिर कम से कम बहुत ऊंचे पहाड़ पर था, और ये हुस्न की देवी थी जिसके मंदिर में बहुत सी फाशाएं क्या करती थी, नाच करती थी, अपना कारोबार करती थी, और बहुत से दूसरे क्या करते थे उस दौर के लोग, उसके मंदिर में जाकर चढ़ावे चढ़ाते थे जानवरों के। इसके बारे में बहुत सी हमें मालूमात मिलती है कि करंथस की कलीसिया में कौन कौन से मसलों का सामना था। मुकदमाबाजी उनमें थी, कयामत से इनकार, शादी के बारे में उनके सवाल और जवाब, आपस में तफरके, झूठे उस्तादों की तालीम, कलीसिया में बंटवारा, और फिर सबसे बढ़कर उन दिनों में करंथस जो रूमी संतलत का एक अजीमुल शान यानी कि बहुत उम्दा शहर था, वो ऐश परस्ती बदकारी का अड्डा बना हुआ था। और इसमें हमें ये सीखने को मिलता है, पालूस रसूल उनको सलाह करते हुए कहता है, 10वीं बाप की पहली आयत से जब पढ़ते हैं, कहता है, ऐ भाइयों, मैं तुम्हारा इससे नावाकिफ रहना नहीं चाहता कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे और सब के सब समंदर में से गुजरे और सब ही ने उस बादल और समंदर में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही रूहानी खुराक खाई और सब ने एक ही रूहानी पानी पिया, क्योंकि वो उस रूहानी चट्टान से पानी पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। तो पहली चार आयात में पालूस रसूल इन ईमानदारों को उस गुजरे अयाम के बारे में बयान करता है कि किस तरह हमारे बाप दादा के साथ खुदा बादल की सूरत में उनकी रहनुमाई करता था, किस तरह उनको उसने संभाला, उनको पानी दिया, आसमान से रोटी खिलाई, हर तरह की उनकी जरूरियात को पूरा किया, और मसीह उनके साथ साथ चलता था रूहानी चट्टान के तौर पर। और जब हम 5वीं आयत से 13वीं आयत में देखते हैं तो उन लोगों का हाल बयान किया गया है, उनकी उनका गुनाह, उनकी बदकारी, उनकी नाफरमानी बयान की गई है। तो 5वीं आयत में पालूस कहता है, मगर उनमें से अक्सरों से खुदा राजी ना हुआ, चुनाचे वो बियाबान में ढेर हो गए। गिनती 14 बाप उसकी 29वीं आयत से 37वीं आयत के मुताबिक वो सब ढेर हो गए, क्योंकि उन्होंने खुदावन खुदा की नाफरमानी की, बुत परस्ती की, और क्या हुआ, खुदा ने उनको मौत के हवाले किया। और 6वीं आयत में लिखा है, ये बात हमारे वास्ते इबरत ठहरे, यानी कि नसीहत ठहरे। इबरत का मतलब नसीहत, तंबी, या क्या कह सकते हैं कि खबरदारी के तौर पर असलाह, कि इसराइल के लिए ये क्या ठहरे, इबरत ठहरे उनके लिए, ये नसीहत सारे कि किस तरह इसराइलियों ने बियाबान में खुदा की नाफरमानी की, ताकि हम बुरी चीजों की ख्वाहिश ना करें जैसे उन्होंने की। उन्होंने बुरी ख्वाहिशें की, उसके बारे में हमें बहुत से हवालात मिलते हैं, देखेंगे नहीं वक्त की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए। और साथ में लिखा है, और तुम बुत परस्त ना बनो जैस तरह बाज उनमें से बन गए थे। चुनाचे लिखा है कि लोग खाने पीने को बैठे, फिर नाचने कूदने को उठे। ये उस वक्त का वाकया है, खरूज 32वां बाप, जब उन्होंने खाने पीने को इकट्ठे हुए, यानी कि मैं से मस्त हुए, और उन्होंने बदकारी की, नशे में गुल होकर उन्होंने बिन ब्याही औरतों के साथ बुरे काम किए, खुदा के हुक्म को तोड़ा, और नाचने और कूदने को उठे, यानी कि उस बछड़े को जो उन्होंने सोने की बालियां उतार कर बनवाया था हारून से, उसकी इबादत करने लगे। और 8वीं आयत में लिखा है, और हम हरामकारी ना करें जिस तरह उनमें से बाज ने की, और एक ही दिन में 30,000 मारे गए। पालूस क्रंथिस के ईमानदारों को उनकी मिसाल देते हुए कहता है, और खुदा की आजमाइश ना करें जैसे उनमें से बाज ने की और सांपों ने उन्हें हलाक किया। आप सबको याद होगा कि उन्होंने खुदा की क्या की, आजमाइश की, और मूसा से खुदा ने कहा कि सांप आएंगे और जलाने वाले सांप उनको भस्म करेंगे, और वहां पर खुदा ने उनको ये भी कहा कि इनका हल क्या है, कि बल्ली पर एक सांप लटकाया जाएगा, और जो कोई उस सांप को देखेगा वो सांपों के जहर से बच जाएगा, जो यीशु मसीह की तरफ इशारा है कि आने वाले दौर में जो यीशु मसीह ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा, और जो कोई उस पर निगाह करेगा, जो कोई उस पर ईमान लाएगा, वो हमेशा की जिंदगी पाएगा, जैसे यूहन्ना की इंजील 3 बाब उसकी 14 और 15 और 16 आयत में यीशु मसीह ने निकुदीमस से कहा। तो उन्होंने आजमाया, और लिखा है 10वीं, और तुम बुड़बुड़ाओ नहीं जिस तरह उनमें से बाज बुड़बुड़ाए और हलाक करने वालों से हलाक हुए। तो ये सारे गुनाह उनके वो जाहिर करता है, और फिर उनके हाल पर वो गौर करता है जो क्रंथस की कलीसिया में मौजूदा तौर पर उनका हाल हो चुका था, कि वो उस देवी के मंदिर में जाते थे, जब वहां पर वो जाते थे तो कसबी औरतों के साथ वो बेहरमती के काम करते थे, और जो चढ़ावे उस देवी के मंदिर में चढ़ाए जाते थे उसे खाते थे। तो आगे पालूस रसूल कहता है, जैसे यीशु मसीह ने कहा कि तुम दो मालकों की खिदमत नहीं कर सकते, 14वीं आयत से लेकर बाप के आखिर तक, मैं चाहूंगा आप सबकी हौसला अफजाई करूंगा कि आज इसे पढ़ें। हम दो मालकों की खिदमत नहीं कर सकते, वैसे जैसे उस दौर में यीशु मसीह ने कहा, वैसे ही दूसरे लफ्जों में पालूस रसूल यहां पर कहता है 14वीं आयत में, इस सबब से वो सारे सबब उनको बयान करता है जो बनी इसराइल कौम की तारीख में हुए, जिनसे हमको सीखने के लिए वो कहता है कि सबक मिलता है, हमें आगाह किया गया है, खबरदार किया है कि एक बुत परस्ती से भागें। तो उनको वो आगाह करता है, और कहता है इस सबब से, सबब क्या है, वो पहले ही तेरी 13 आयात में बयान कर चुका है। और कहता है ऐ मेरे प्यारे, ऐ मेरे प्यारो, बुत परस्ती से भागो, मैं अकलमंद जानकर तुमसे कलाम करता हूँ, जो मैं कहता हूँ तुम आप उसे परखो, वो बरकत का प्याला जिस पर हम बरकत चाहते हैं, क्या मसीह के खून की शराकत नहीं। यहाँ पर वो यीशु मसीह के उस हुक्म को याद दिलाता है कि जो तुम अपनी कलीसिया में करते हो, यानी कि यीशु मसीह के उस हुक्म के मुताबिक उस मैं के प्याले को, शीरे को जब पीते हो, उस पर बरकत चाहते हो, क्या तुम्हें याद नहीं कि वो मसीह की शराकत है। वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या मसीह के बदन की शराकत नहीं। क्योंकि रोटी एक ही है, इस वास्ते इसलिए हम जो बहुत से हैं एक बदन हैं, क्योंकि हम उसी एक रोटी में शरीक होते हैं। आगे पालूस रसूल उनको बयान करता है, जो जिस्म के एतबार से इसराइली हैं उन पर नजर करो, क्या कुर्बानी का गोश्त खाने वाला कुर्बानगाह के शरीक नहीं। वो उनको याद दिलाता है कि जब खुदा तुमको हुक्म देता था कि मेरे लिए बर्रा मुकरर करो, तो वो खुराक खाने को जब सब इकट्ठे होते थे, तो वो क्या होते थे, सब उस खुराक में, उस कुर्बानी में शरीक होते थे। दूसरे लफ्जों में वो उनको यही बयान कर रहा है कि तुम क्रंथस में रहते हुए या तो फिर खुदा की मेज पर शामिल हो या फिर शायतीन की, क्योंकि वो जो देवी हुसन की देवी थी उसका यही मकसद था। क्रंथस उस दौर के मुताबिक जो अमीर तरीन शहर था, जिसमें क्या कह सकते थे, कारोबार की बहुत उम्दा बंदरगाह थी, जहां पर बहुत से लोग कारोबार के लिए आते थे, और उस शहर में बहुत से मुख्तलिफ रवाज और कबीले और मुख्तलिफ जबानें बोलने वाले लोग थे। तो ईमानदार क्या करते थे, खासकर वो जो एक दौर में यूनानी थे, एक दौर में वो उस देवी के मानने वाले थे, वो अपनी पिछली जिंदगी को दोहराने के लिए फिर उन मंदिरों में जाते थे, उस देवी की पूजा करते थे और बहुत दफा बदकारी के काम करते थे। तो उन्हें पालूस रसूल कहता है, आप इसे पढ़ सकते हैं, लेकिन 21वीं आयत आपके लिए पढ़ूंगा। पालूस कहता है, तुम खुदावंद के प्याले और शैतान के प्याले दोनों में से पी नहीं सकते। हम दो मालिकों की, वो कहता है, खिदमत नहीं कर सकते, क्योंकि खुदावंद के दस्तरखान और शैतान के दस्तरखान दोनों पर शरीक नहीं हो सकते। ग्रंथस की कलीसिया में यह हाल था, वो मंदिर में जाकर मुक्त का गोश्त भी खाते थे, और जब शहरबानी की रस्म होती थी तो वहां पर भी वो सबसे पहले इकट्ठे होकर क्या करते थे, खा पी लेते थे, और उनमें बेतफाकी, तफरके, बिदतें और नातफाकी पाई जाती थी। क्यों? क्योंकि वो दो मालकों की खिदमत में लगे हुए थे। पालूस साफ कहता है, या मसीह के या मसीह के नहीं, या मसीह के या शैतान के, कहता है कि तुम दो मालकों की खिदमत नहीं कर सकते। और उनको याद दिलाता है 22वीं, क्या हम खुदा की गैरत को जोश दिलाते हैं, सवाल करता है, क्या हम उससे जोरावर हैं। तो पालूस रसूल आगे पूरी तफसील के साथ उनको बयान करता है, सब चीजें रवा तो है मगर सब चीजें मफीद नहीं, सब चीजें रवा तो है मगर सब चीजें तरक्की का बायस नहीं, कोई अपनी बेहतरी ना ढूंढे बल्कि एक दूसरे की, एक दूसरे की। और वो उनको बयान करता है, जो कसाबों की दुकानों में बिकता है वो खाओ, और दीनी इम्तियाज के सबब से कुछ ना पूछो। जब उस मंदिर में बहुत से चढ़ाए चढ़ाए जाते थे, तो खाने के लिए जो बच जाता था वो क्या करता था, मार्केट में दुकानों में बेचा जाता था। पालूस रसूल कहता उनको और तफसील के साथ, हमारे पास वक्त कम है, मैं चाहूँगा आप सबकी हौसला अफजाई करूँगा कि इस 10वें बाब को, 8वें बाप को, 11वें बाप को पढ़ें, और पालूस रसूल इबलीस के यहाँ उस चाले को, उस हरकत को, कि वो जिस तरह मसीह की मेज़ थी वैसे ही उसने अपने बुतों की मेज़ बनाई हुई थी, जिसमें वो ईमानदारों को क्या करता था, गुमराह करता था, और आज भी वो कर रहा है। इसलिए याद रहे, ईमानदार होते हुए, मत्ती की इंजील के मुताबिक उसका 6वां बाप उसकी 24वीं आयत, यीशु मसीह ने कहा, कोई दो मालकों की खिदमत नहीं कर सकता। एक माल के जहां है जिसका नाम यीशु मसीह है, इस एक आरजी मालक और सरदार कहा गया है इस दुनिया का, जिसका नाम अबलीस है। इसलिए ईमानदार होते हुए हमें अबलीस के तमाम बनावटी नकली कामों से आगाह होने की ज़रूरत है। आए हम खुदा के हुजूर झुकें और उसका शुक्र करें कि उसका कलाम किसी का लिहाज नहीं करता, उसका कलाम कोई भी तरफदारी नहीं करता, उसका कलाम दोधारी तलवार से ज़्यादा तेज़ है, और हम सब खुदा के शुक्रगुजार हैं कि वो हम सब की रहनुमाई करता है। खुदा बाप, आज के कलाम के लिए तेरा शुक्र हो। आई हुई तमाम माओं के लिए, बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, और खुदाम खुदा तमाम खुदाम खुदा तेरे खादमों के लिए जो मुल्क पाकिस्तान में आरिफ वाला में है, खुदाम सबको खुदाम अपने महफूज हाथों में रख, ताकि हम सब तेरी पहचान में बढ़ते जाएं और तेरा कलाम दुरुस्तगी से बयान करते रहें। खुदाम यसु मसीह के नाम में खुदाम खुदा हम सबको बरकत दे। अगर कुछ बयान करने से कासत रहा हूँ, खुदाम खुदा तेरा पाक रूह सब की रहनुमाई करे। अगर कोई इंसानी सोच से ऐसी बात कही है जो तेरे लोगों की तरक्की का बायस नहीं, खुदावंद अपने लोगों के जहन रूह से उसे दूर कर, और वही कलाम जो तरक्की का बायस है, सबके लिए तरक्की का बायस बने। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगता हूँ, आमीन।